ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग श्रीमद् भागवतम से सत्संग करेंगे। जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि सातवां स्कंद प्रारंभ हो चुका है और इसका दूसरा अध्याय चल रहा है और आज का श्लोक क्रमांक है 21वां। तो मेरे पीछे श्लोक दोहराएंगे। भूतानां इह संवासः प्रपायाम इव सुव्रते दैवेन एकत्र नीतानां उन्नीतानां स्वकर्मभिः। भूतानामिह संवासः प्रपायाम्य सुव्रते प्रपायामिव सुव्रते दैवेनैकत्र नीतानां उन्नीतानां स्वकर्मभिः भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुव्रते दैवेनैकत्र नीतानां उन्नीतानां स्वकर्मभिः। पढ़िए। भूतानामिह संवासः भूतानामिह संवासः यामिव सुव्रते दैवेनैकत्र नीतानां स्वकर्मभिः। प्रपायामिव सुव्रते दैवेनैकत्र नीतानां स्वकर्मभिः। माताजी। भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुव्रते दैवेनैकत्र नीतानां उन्नीतानाम स्वकर्म भी शब्दार्थ भूतानाम समस्त जीवों का इह इस संसार में समवासह साथ साथ रहना प्रपायाम ठंडा जल पीने के स्थान प्याऊ इव सदृश सुव्रते हे भद्रे दैवेन उच्च प्रबंध द्वारा एकत्र एक स्थान पर नीता नाम लाए गए उन नीता नाम दूर दूर ले जाने वालों का स्वकर्म भी अपने अपने कर्मों से अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की अनुवाद। हे माता किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक राहगीर पास पास आते हैं किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। पीछे दोहराएंगे, हे माता किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक राहगीर पास पास आते हैं किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। तात्पर्य, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभावों में आकर अपने को उन कर्मों का कर्ता सोचने लगता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक है ये। सारे जीव प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही कर्म करते हैं क्योंकि भौतिक जगत में हम पूरी तरह उच्चतर नियंत्रण में रहते हैं। सारे जीव इस जगत में इसलिए आए हैं क्योंकि वे कृष्ण के समान भोग करना चाहते हैं और इस तरह वे प्रकृति द्वारा विभिन्न मात्राओं में बद्ध होने के लिए भेजे गए हैं। भौतिक जगत में तथा कथित परिवार एक घर में ऐसे अनेक व्यक्तियों का सम्मिलन है जिन्हें अपना बंदी जीवन बिताना होता है। जिस तरह जेल में बंद अपराधी अपनी अवधि पूरी होने पर छोड़ जाने पर ही बिखर जाते हैं, उसी प्रकार हम परिवार के सदस्य जो अस्थाई रूप से एकत्र हुए हैं अपने अपने गंतव्यों की यात्रा करते रहेंगे। एक अन्य दृष्टांत दिया जाता है कि पारिवारिक सदस्य उन तिनकों के समान हैं जो नदी की लहरों में साथ साथ बहते रहते हैं। ये तिनके कभी कभी भंवर में पास पास आ जाते हैं और पुनः उन्हीं लहरों द्वारा विलग कर दिए जाते हैं तथा अकेले जल में तैरने लगते हैं। हिरण्यकशिपु यद्यपि दैत्य था किंतु उसे भौतिक ज्ञान और समझ थी, फलस्वरूप उसने अपने पारिवारिक जनों को अपनी अनुज वधू अपनी माता तथा भतीजों को जो सलाह दी वह बहुत अच्छी थी। यद्यपि दैत्यों को ज्ञान में अत्यंत बढ़ा चढ़ा माना जाता है लेकिन वे भगवान की सेवा में अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग न करने के कारण ही दैत्य या असुर कहलाते हैं, किंतु देवतागण बड़ी ही बुद्धिमानी से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न रखने के लिए कर्म करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें में इस प्रकार की गई है। अतः पुंविर्दुज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अतः द्विजश्रेष्ठ, यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य वर्ण तथा आश्रम के विभाग के अनुसार अपने नियत कर्तव्य धर्म करता हुआ जिस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकता है वह है भगवान हरि को प्रसन्न करना। देवता या देवतुल्य बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करे, चाहे उसकी वृत्ति कुछ भी हो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं वक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्द पाठाय प्रेम वर्षाक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत संगिन मद्गुरो मन महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमोस्तुते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। भागवत का वक्तव्य प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी श्रेष्ठ वरिष्ठ उत्तम अधिकारी भगवत चरण सेवानुरागी समस्त यहाँ पर उपस्थित वैष्णव और वैष्णवी माता जी लोगों के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इस गंभीर विषय में बोलने में सक्षम हो सकूँ, ऐसी कृपा करें। हरे कृष्ण। भूतानामिह संवासः प्रपायामि वसुव्रते दैवेन एकत्र नीतानाम् उन्नीतानाम कर्म स्वकर्मभिः। हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक राहगीर पास पास आते हैं, किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। तो यहां पर प्रकृत प्रसंग में हिरण्यकश्यपु आत्म तत्व का बोध कराने जा रहा है। हम लोग सामान्यतया जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु एक दैत्य है, असुर स्वभाव वाला है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हिरण्यकश्यपु भगवान का पार्षद है। और वो जो पार्षदत्व है, पार्षदत्व में जो भगवत सेवा का भाव है, उनमें कभी भी लुप्त नहीं होता सूक्ष्म रूप से। और भगवत पार्षद होने के कारण ही अपने परिजनों को आत्म तत्व का बोध करा रहे हैं। अन्यथा सामान्य असुर तामसी वृत्ति का होता है, उसको आत्मा और शरीर में कोई भेद ही ज्ञात नहीं होता। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि वो अपने परिजनों को आत्मा के विषय में बता रहे हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब बस ये एक प्रवास है संसार, जहां पर आकर के समस्त लोग मिलते हैं, फिर बिछुड़ जाते हैं। तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जो ऊपर से पतन होता है, वास्तविक पतन नहीं होता है कि पूर्ण रूप से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष सनत कुमारों के हिसाब से यहां पर वहां के अवस्था और अपनी सेवा को छोड़ करके पृथ्वी पर आ जाते हैं असुर बनने, ऐसा नहीं होता है। हिरण्यकश्यपु को भी जय और विजय को साप भी भगवान की इच्छा से प्राप्त होता है। सनत कुमारों के मन में ऐसा भावना उत्पन्न होती है, इसलिए इसको ऊती कहा गया। इस सप्तम स्कंद को दूसरे स्कंद के दसवें अध्याय में कहा कि ऊती, अत्र सर्गो विसर्गस्य पूषणम ऊतयः। तीसरा स्कंद सर्ग है सृष्टि के विषय में, चौथा विसर्ग है, पांचवा स्थान है भगवान के संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टि के विषय में, छठवां पोषण है भगवान की कृपा कैसे होती है, और सप्तवां स्कंद ऊती। ऊती का मतलब होता है ऊतयः कर्म वासना। ऊती माने कर्म की वासना। यदि कर्म की वासना नहीं रहेगी तो संसार का विस्तार हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए वहां पर सातवें स्कंद को ऊती कहा। अब ऊती भी दो प्रकार की है, कर्म वासना दो प्रकार की, एक शुभ कर्म वासना, एक अशुभ कर्म वासना। जय विजय भगवत पार्षद हैं, भगवान के धाम में है, अनंत आनंद में है, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष छल कपट कुछ भी नहीं। जहां पर वैकुंठ है वहां पर चिंता आदि भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वहां पर जय विजय को अशुभ वासना पैदा हो गई, भेद पैदा हो गया, भक्तों को पहचान नहीं पाए। और यहां पर दैत्य कुल में उत्पन्न होने के बाद प्रहलाद महाराज में शुभ वासना उत्पन्न हुई, जिसके चलते उन्होंने भजन किया। तो इन दोनों चीजों को जो कि आपस में विरोधी हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। और यहां पर विरोध होना कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। आत्मनि चै विविदाश्च सक्तयः 1:2:28 में वेदांत सूत्र में भी बोला है कि भगवान में भी दो शक्तियां विपरीत विपरीत रहती हैं, जड़ शक्ति भी भगवान की है और चेतन शक्ति भी। तो ऐसे यहां पर भी शुभ और अशुभ वासना का होना कोई आश्चर्य नहीं है। तो प्रहलाद में शुभ वासना देखी गई, असुर कुल में तामस स्थान में उत्पन्न होने के बाद भी, और जय विजय में अशुभ वासना देखी गई शुद्ध स्थान में उत्पन्न होने पर भी। तो यहां पर जो उनका पतन हुआ, वो अणिमा आदि सिद्धियां वैकुंठ के वासियों को सबको सिद्ध होती हैं। तो इसीलिए उस सिद्धि के माध्यम से उन्होंने पृथ्वी पर आकर के एक शरीर में प्रविष्ट होकर के भगवान के साथ लीला संपादन किया। पूर्ण रूप से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का भगवान के साथ कोई बैर नहीं है। यदि बैर होता, अबैर भाव होता, विपरीत बुद्धि होती तो क्षमा मांगते रहते, कहते भगवान हमको जल्दी से ठीक कर दो या हमको ऐसा साप मत दो। लेकिन उन्होंने उसको भगवत सेवा के लिए स्वीकार किया और भागवत में कहीं भी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने प्रायश्चित नहीं किया अपने कर्मों का कि हमने अपमान कर दिया और हमको साप मिला। जनरली हम लोग देखते हैं जय श्री श्री राधा रास बिहारी जी की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि जिसको साप मिलता है तो गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन जय विजय यहां पर कुछ गिड़गिड़ाए नहीं, क्योंकि उनका बैर भाव नहीं था, वो तो केवल लीला शक्ति ने उसको छिपा दिया था बस, क्योंकि लीला नहीं हो पाएगी फिर भगवान की। तो इसीलिए यहां पर एक बात यह है, इस पूरे संदर्भ में तीन चार बातें हैं, प्रभुपाद ने भी एक दो बात बोली हैं, और यहां इस श्लोक पर भी हमको यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जीव का कैसे सृष्टि होती रहती है बार बार, कैसे वो जीव बार बार यहां पर आता है, किन कारणों से आता है। तो इस श्लोक में एक शब्द आया है दैवेन, भूतानाम यह संवास प्रपायाम यह सुव्रते दैवेन दैवेन एकत्र नीतानाम। दैवेन, दैवेन मतलब प्राचीन कर्मणा, प्राचीन कर्मों से, पूर्व कर्मों से ही व्यक्ति को नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। शरीर धारण के लिए, सृष्टि चलाने के लिए माया के दो भाग हैं, एक निमित्तांश और एक उपादानांश। निमित्तांश माने भागवत में दसवें स्कंद के 63 चैप्टर में 26वें श्लोक में ज्वर स्तुति है, ज्वर बुखार उन्होंने स्तुति किया है। तो उन्होंने कहा कि शरीर जो है, ये सारे शरीर कहते हैं कि कालो दैवम कर्म जीव स्वभावो द्रव्यम क्षेत्रम प्राणम आत्मा विकृति विकारः। कहते हैं कि इन सब का, किनका, दैव का, काल का, कर्म का, अजीव, स्वभाव, द्रव्य माने पंच महाभूत आदि क्षेत्र, शरीर, प्राण जिसके माध्यम सब बंधा हुआ पूरा शरीर, प्राण निकल गया तो शरीर चुप हो जाता है, आत्मा माने अहंकार जिस अहंकार के कारण जीव यहां से वहां भटकता रहता है, और विकारः, विकारः मतलब इंद्रियां, एकादश इंद्रियां, इन सब का संघात है शरीर। तो उनमें से भी दैव, काल, स्वभाव ये जो हैं, ये जीव के साथ हमेशा रहते हैं, ये निमित्त हैं शरीर के उत्पादन में। अब बाकी पंच महाभूत, इंद्रियां, प्राण, ये सब उपादान हैं। जैसे किसी घड़े को बनाने में मिट्टी साक्षात कारण होती है घड़ा बनने में, सीधे मिट्टी ही तो घड़ा बनता है, और एक व्यक्ति होता है जो घड़े को बनाता है तो उसको बोलते हैं निमित्त कारण, है ना। घड़ा बनने के लिए, कोई भी चीज बनने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। उपादान का मतलब जिससे वो वस्तु तैयार हो रही है, जैसे एक करताल है, करताल कैसे बना, करताल नाम कैसे आया, कांसा से। तो इस करताल में यदि हम चारों तरफ देखेंगे तो केवल कांसा ही कांसा है, तो कांसा ही करताल रूप कार्य रूप से उत्पन्न है, और इसको किसी ने रूप दिया उसको बोलते हैं निमित्त कारण, जिसने बनाया होगा इसको, बनाने वाला। ऐसे ही ये जो शरीर बनते हैं उनमें जो दैव, काल और स्वभाव होता है और कर्म, ये चारों निमित्त कारण, निमित्त अंश से होते हैं। यदि ये चारों नहीं रहेंगे तो शरीरों का निर्माण होगा नहीं। तो इसके लिए, शरीरों के निर्माण के लिए चारों चीजों की जरूरत है निमित्त कारण में। ये बात थोड़ी कठिन है समझने में कि निमित्त क्या है, उपादान कारण है, है ना, मीडिएटर कॉज है ना उसको बोलेंगे, यानी डायरेक्ट, जो डायरेक्ट कॉज होता है किसी चीज के लिए। तो यहां पर ऐसे शरीर बना। अब शरीर क्यों बनता है, नहीं बनना चाहिए, तो शरीर बनने के लिए कर्म की जरूरत है। कर्म करेगा तो जन्म होगा, जन्म होगा तो कर्म करेगा, फिर कर्म करेगा तो फिर जन्म होगा, ये चलता रहता है। तो कहते हैं यहां पर दैवेन, दैवेन का मतलब होता है दैव से, प्राचीन कर्मों से। कर्म तीन प्रकार का होता है, इसको समझिएगा। तीन प्रकार कर्म कौन, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। शरीर के उत्पादनों में ये तीनों की आवश्यकता है। संचित मतलब इकट्ठा हो कर्म, जो बहुत सारा अनंत काल से जो हम कर्म करते आ रहे हैं वो हमारे कोटि में हमारे भोगने के लिए इकट्ठा है, उसको बोलते हैं संचित। और वो कर्म कितना सारा है, वो अनंत कर्म है, बहुत सारा है, अनादि काल से, कब से सृष्टि हुई है उसका कोई पता तो है नहीं, ये मेमोरियल टाइम बोलते हैं, तो तब से कितने सारे जन्म हुए, 2.25 करोड़ वर्ष में एक बार मनुष्य देह की प्राप्ति होती है, तो सोचिए 2.25 करोड़ में अलग अलग कितने बार कर्म किए, तो कितने सारे इकट्ठे हो गए, तो हम गिन नहीं सकते, तो अनंत बोल दिए। तो संचित कर्म अनंत है, उस संचित कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध माने एक अंश जिससे शरीर बना है। जिस दिन प्रारब्ध समाप्त होगा भोगने के लिए, प्रारब्ध माने स्टार्टेड, जो प्रारंभ हो चुका, तो ये शरीर किसका परिणाम है, प्रारब्ध रूप का, प्रारब्ध का फल है ना, ये प्रारब्ध रूप में है। जिस दिन इस शरीर के कर्म समाप्त हो जाएंगे, ये शरीर अपने आप गिर पड़ेगा, एक क्षण भी नहीं टिकेगा, एक क्षण भी, तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। संचित जो इकट्ठा है उसी में से एक उठा करके दे दिए, मनुष्य का शरीर बन गया। अब प्रारब्ध निश्चित है, अब कैसा प्रारब्ध, पुण्य है कि पाप है। यदि पुण्य है तो अच्छे घर में उत्पन्न होंगे, संतों के बीच में होंगे, हैं बढ़िया ऐश्वर्यों की भोगों की प्राप्ति होगी। अप्रारब्ध यदि खराब है, पाप है, तो बिल्कुल तामसी स्थान पर उत्पन्न होंगे, बहुत कष्ट, क्षण क्षण में कष्ट होगा, ऐसे स्थानों पर जीव पैदा होता है। तो प्रारब्ध ऐसा होता है, और जो प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता है, किसी भी आचार्य ने न कोई, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, जो हम लोगों ने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं वो निश्चित ही भोगना पड़ेगा। ये आदि पुराण का श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध है, कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, निश्चित ही भोगना पड़ेगा, किसको, जो हमने किया है पूर्व में, शुभ और अशुभ दोनों, पाप और पुण्य दोनों। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति ने पुण्य कर दिया तो पापों को काट दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पुण्य अलग से भोगना है और पाप अलग से भोगना है। पुण्यों का फल स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी होता है, अच्छे अच्छे भोग भी होते हैं, और पापों का फल तो सबको पता है, नारकीय यातनाएं, तो सबको भोगना पड़ता है प्रारब्ध। और तीसरा जो होता है क्रियमाण कर्म, क्रियमाण माने जो कर रहे हैं। अब प्रारब्ध से तो जो सुख दुख लिखा है वो फिक्स हो चुका है कि इस शरीर में इस व्यक्ति को इतने सुख होंगे, इतने दुख होंगे। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेते सज्जन्ते गर्भस्थ सैव देहिना। आयु कर्म विद्या निधन धन सब बिल्कुल फिक्स है, गर्भ में जिस समय शिशु आया उसी समय फिक्स हो गया। इसके लिए भागवत में बार बार मना करते हैं कि तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयुर्व्यय परम, 7:6:4 भागवतम में प्रहलाद महाराज मना करते हैं कि इसके लिए प्रयास नहीं करना है। क्यों, तल्लभ्यते दुखवत, कहते हैं दुख के समान सर्वत्र प्राप्त होता है, जैसे दुख बिना मांगे आता है ऐसे सुख भी बिना मांगे आएगा। इसलिए प्रारब्ध में जो आ चुका, जो होना है वो होगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना। तो प्रयास किसके लिए करना है, तो एक कर्म और दिया है क्रियमाण। अब हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं आगे के लिए, क्योंकि शरीर तो प्रारब्ध का फल है, तो इसमें तो जो चालू हो गया तो हो गया, होगा सुख दुख जो भी लिखा वो फिक्स है। कदाचित यदि कोई भगवान की पूर्णतया शरण में चला जाए तो शांति प्राप्ति हो सकती है उसको, लेकिन भक्त लोग ऐसा चाहते नहीं है। कहीं पर भी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, यदि भगवान ने अवतार लिया और अपने भक्तों को कष्ट मिटाने के लिए उनसे कहा भी हो तो भक्तों ने कह दिया नहीं, हम अपने कर्मों को भोग लेंगे। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष माणा भुंजान एव आत्मकृतम, ब्रह्मा जी बोलते हैं 14वें अध्याय में 10वें स्कंद के 8वें श्लोक में, कहते हैं कि हमारा ही कर्म है और हम अपने आप आपकी कृपा मानते हुए भोग लेंगे, तो कोई कष्ट का अनुभव नहीं होगा। अक्रियमाण कर्म एक ऐसा कर्म है जो केवल और केवल मनुष्यों को अधिकार है, वो अपने कर्म को बना सकता है। देवता तो फंस गए, जो देव योनि में चला गया वो फंस गया, उसका कोई उद्धार नहीं, वहां से वापस यहां पर आएगा, अक्रियमाण कर्म करेगा, जो अभी हम कर रहे हैं उसको क्रियमाण बोलते हैं। देवताओं के लिए इसका लाभ नहीं है, क्रियमाण कर्म देवता लोग नहीं कर सकते, तो जो क्रियमाण कर्म नहीं कर सकता उसका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि देव योनि भोग की योनि है, उसमें जो यहां पृथ्वी में जो अच्छा बुरा किए, अच्छा किए तो देवता बन गए, तो भोग करो, सुखों का बंधन है। जैसे किसी व्यक्ति को सोने की हथकड़ी पहना दें, हाँ बहुत अच्छा सोने की हथकड़ी पहनाओ, देखो मेरे पास सोना है, लेकिन वो सोने की हथकड़ी तो पहना है लेकिन वो बंधा हुआ है, कुछ कर नहीं सकता है ना, अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। तो देवताओं का शरीर धारण करना माने सोने की हथकड़ी को धारण करने जैसा है, सोना तो है, मूल्यवान तो है, लेकिन वो बंधन ही है। पशु योनि, नार की योनि, उसको प्राप्त करना माने लोहे की हथकड़ी के समान है, तो बंधन तो बंधन है, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो चाहे हीरे जवाहरात से बनी हुई जंजीर हो, बंधा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो ये देवताओं को ये क्रियमाण कर्म करने का अधिकार नहीं है, ये केवल मनुष्य को है, केवल मनुष्य को, मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इन तीनों कर्मों करते हुए व्यक्ति, अच्छा इसको समझेंगे कैसे, एक उदाहरण दे रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे कोई व्यक्ति प्लेन रास्ते में साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाते चलाते अचानक एकदम से चढ़ाई आ गई, तो क्रियमाण कर्म मतलब चला रहा है और एक अचानक चढ़ाई आ गई, तब जब वो चढ़ाई आ गई तो वो व्यक्ति बहुत मेहनत करना पड़ रहा है उसको चढ़ाने में, बहुत मेहनत, यदि वो उससे हार गया तो छोड़कर भाग जाएगा, तो अपने गंतव्य को पार नहीं कर पाएगा, तो दोबारा उसको ढलान नहीं मिलेगी, वहीं रह जाएगा। तो ऐसे ही व्यक्ति जब क्रियमाण कर्म करता रहता है, जैसे हम लोग करते रहते हैं, तो बीच बीच में दुख रूपी प्रारब्ध टपकते रहते हैं, विघ्न डालते रहते हैं, है ना, अच्छा कर्म करने जाते हैं बुरा हो जाता है, लेकिन वो जो प्रारब्ध होता है क्षणिक होता है, बहुत समय का, लंबे समय का नहीं होता है। जैसे वो ढलान चढ़ाई आई, चढ़ाई के बाद फिर उतार आएगा। तो हमको ना तो प्रारब्ध, ना तो सुख में जाना है, ना दुख में जाना है, ना चढ़ाई चढ़ना, ना ढलाई में, बस प्लेन में रहो, क्रियमाण करो और निकल लो। तो क्रियमाण मतलब तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितौ, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि इसीलिए शास्त्र को प्रमाण करना है क्रियमाण कर्म, मन से नहीं करना है। अब आप सोचेंगे किसी की मैं हत्या कर दूं तो ये तो मेरा, इसकी हत्या मेरे हाथों लिखी होगी इसलिए मर गया, तो यदि आप ऐसा विचार करते हैं तो आपको पाप ही होगा, क्योंकि आप अहम बुद्धि से कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं मैं, और इसका ऐसा आप सोचने का अधिकार नहीं है जीव को कि इसकी हत्या तो मेरे हाथों लिखी होगी, प्रारब्ध में होगी तो हो गई, ये वो ऐसा नहीं सोच सकता है उसके हाथ में, क्योंकि उसके हाथ में क्रियमाण कर्म है, उसके पास एक और प्रॉपर्टी है जिससे वो विचार कर सकता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उसमें भी अपने मन से नहीं, धर्म शास्त्रों का आधार लेकर के और भक्ति शास्त्रों का, भागवत आदि का आधार लेकर के करना है ना, नहीं तो ऐसे में तो सब लोग कहेंगे जो लिखा होगा होगा। और एक बात और इसमें समझने वाली, भक्ति ऐसा भक्ति के लिए नहीं सोच सकते हैं कि भाग्य में होगी तो होंगी, नाम जपाएंगे, ऐसा नहीं है। भक्ति जो है साधु संघ पर निर्भर करती है, साधु संघ से उत्पन्न होती है, वो भगवत कृपा से प्राप्त होती है। भगवत कृपा मतलब भगवत कृपा से साधु संघ प्राप्त होगा और साधु उनके मुख से भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो भक्ति उत्पन्न होगी। भगवत कृपा मतलब ये नहीं कि भगवान आएंगे और चाबी लगाकर यहां घुमा देंगे तो आप फटाफट हरि नाम करने लगेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, आना हुआ आज तक। भगवान कृपा माने किसी साधु का संग करा देंगे, उसके माध्यम से आप भक्ति में लगेंगे, यह है सिद्धांत। कर्म से भक्ति नहीं बनती है, भक्ति स्वरूप भगवान के स्वरूप शक्ति का अंश है, माया शक्ति का अंश नहीं है। माया शक्ति के अंश से कर्म निर्मित होते हैं, शरीर निर्मित होते हैं, भक्ति निर्मित नहीं होती है, इस बात को समझना चाहिए। तो इसके लिए, भक्ति के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो यहां पर एक बात कि दैवेन, दैव से, प्राचीन कर्मों से ही शरीरों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसके जो सुख दुख है उसमें फंसना नहीं चाहिए, ये होंगे इनको होने दो, ये होते रहेंगे, हमको इससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है, आगे का देखना है, क्रियमाण को सही करना है बस, तो ही फायदा है। पूर्व कर्मों से फंस करके कि सुख हुआ दुख हुआ और उसी को समस्याओं को समाधान करने में, कि दुख को मिटाने के लिए, क्योंकि संसार में व्यक्ति एक दुख को मिटाने के लिए ही दूसरा दुख उठाता है, ये निश्चित बात है ना। किसी को भूख लगी, भूख सुख है कि दुख है? दुख है। कौन चाहता है खा करके सोना और फिर उसके बाद फिर टॉयलेट करो, फिर खाने की इच्छा, बार बार खाने का झंझट ही खत्म हो, सब लोग यही चाहते हैं, क्योंकि खाने की भूख लगी ये एक दुख है। अब उस दुख को मिटाने के लिए 10-12 घंटे काम करना पड़ेगा, अब काम करेंगे फिर बर्तन धो बनाओ खाओ पियो फिर काम में जाना वापस, तो एक दुख को मिटाने के लिए दूसरा दुख उठाना पड़ता है ना। तो इस संसार में यहां पर माया में किसी प्रकार का सुख है ही नहीं। तो यहां पर जीव इस प्रकार से अलग अलग शरीरों को धारण करता है, इसीलिए दुख को मिटाने के लिए प्रयास करना ही नहीं चाहिए, और वो मिटेगा भी नहीं चाहे जितना प्रयास करे। दारू से दारू की बोतल धुलाएगी? कभी नहीं धुल सकती है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं 8वें अध्याय में पहले स्कंद के अंतिम श्लोक है 2-3, उसमें कहते हैं कि न तो दारू की बोतल से जैसे घड़ा नहीं धुल सकता दारू का, कीचड़ से जैसे कीचड़ नहीं धुल सकता, ऐसे ही माया के जो दुख हैं उनको मिटाने के लिए दूसरे दुख उठाकर के वो दुखों का उपशमन हो ही नहीं सकता है, तो उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यहां पर जीव, अब एक बात और, ये तो एक बात हुई कि दैव से शरीरों का निर्माण होता है और जितना देर प्रारब्ध रहेगा उतने देर शरीर टिकेगा, लेकिन कभी कभी जो भक्तगण हैं उनके प्रारब्ध का नाश होने के बाद भी वो शरीर धारण किए रह सकते हैं। जैसे चना को भून दो तो चना भूनने के बाद भी चना तो रहता है ना, तो ऐसे कर्म सारे समाप्त हो जाए भक्ति करके तब पर भी शरीर भक्तों का देखा गया है। तो जीव गोस्वामी और श्रीधर स्वामी के इन दोनों मतों में थोड़ा भेद है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यदि जैसे ही प्रारब्ध समाप्त शरीर तुरंत गिर गया, तुरंत गिर जाएगा तुरंत, लेकिन जीव गोस्वामी कहते नहीं, जो साधक होता है यदि वो चाहे तो अपने सारे कर्मों को भक्ति करके नष्ट करके वो रह सकता है, लेकिन ऐसा रहता नहीं। तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं इस बात से, है ना। तो ये तो एक बात हुई कि दैव से सारे शरीर निर्माण होते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है कि इन शरीरों के निर्माण के बाद जीव करता क्या है, करता क्या है, यहां पर बताया। कहते हैं कि जीव यहां पर एक स्थान में पैदा हुआ, दो चार लोग मिले, फिर एक समय के बाद आया, एक गया दो गया वो घर खाली हो गया, फिर अलग अलग जगह में, जैसे हाथ में एक मुट्ठी रेत लेंगे, रेत एक मुट्ठी पकड़ के रेत लीजिए, रेत के कण जहां जहां स्थित हैं, और जैसे ही रेत छोड़ देंगे वो कण सब बिथर जाएंगे फैल जाएंगे, फिर पुनः रेत इकट्ठे करेंगे तो फिर वो जो कण जहां जहां थे क्या वहीं आएंगे? नहीं, अलग अलग जगह पर आएंगे, है ना। ऐसे ही प्रभुपाद ने और यहां पर हिरण्यकश्यपु उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे प्याऊ पोसरा बोलिए, भोजनालय होटल में लोग जाते हैं खाने के लिए, तो बड़ी सी टेबल लगी हुई है, आप भी बैठ गए, दूसरा भी बैठ गया, तीसरा भी बैठ गया, और फिर खाए पिए थोड़ा सा बातचीत किए और फिर वापस अपने अपने जगह चले गए। ऐसे ही जीवों कर्म निश्चित है, वो आएगा किसके यहां पर कितना भोगना है, स्थित पैदा हो जाएगा और फिर मरने के बाद अपनी अपनी जगह फिर से जन्म हो जाएगा। रेलगाड़ी में हम लोग रेल में या सफर करते हैं, 8 सीटों का केबिन रहता है, 8 लोग अलग जगह से आए हैं, बातचीत करते करते कितनी दोस्ती बन जाती है ना, और फिर बाद में अपना अपना स्टेशन आया, टाइम पूरा हुआ, सब उतरते गए, सब खेल फिर समाप्त। तो ऐसे ही जैसे जल में तिनके नदी बहती है, बरसात के समय में भंवर देखा ना ऐसा घूमता है, जब बहुत पानी बहता है तो ऐसे घूमता है, तो उस घूमने में तिनके या वृक्ष हैं टूटे फूटे झाड़ियां वो सब आकर एक जगह मिल जाती हैं थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही भंवर समाप्त हुआ फिर अलग अलग हो गए। ऐसे ही जीव जो है अपने अपने कर्मों के अनुसार एक ही घर में कर्मों को भोगने के लिए उत्पन्न हो जाता है, और फिर कुछ समय के बाद टाइम पूरा हुआ फिर अलग हो गया, ये प्रक्रिया है। अब यहां पर दूसरी बात यह समझने वाली है कि जीव ऐसा करता क्यों है, आखिरकार चाहता क्या है, क्यों एक शरीर के बाद दूसरा शरीर चाहता है, क्यों एक शरीर को प्राप्त करने के बाद दिन भर दौड़ता रहता है सुख के पीछे, क्यों? तो इसका कारण है क्योंकि दैवेन एकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी, अपने अपने कर्मों से क्या चाहता क्या है वो। तो आपको पता है क्यों शरीर मिलते हैं, जीव क्यों दौड़ता रहता है? एक ही उद्देश्य है, सबका एक ही उद्देश्य है, आनंद की प्राप्ति करना, बस। और कोई उद्देश्य है? चींटी से पूछिए क्यों तुम यहां से वहां सब ढो ढो करके ले जा रही हो सामान खाने वाली शक्कर चीनी, वो कहेगी जाऊंगी खाऊंगी खिलाऊंगी और बड़ा आनंद आएगा। बालक से पूछो क्यों रो रहे हो, उसके मन के प्रतिकूल हो जाता है, आनंद चाहता है इसलिए रोता रहता है, नहीं तो क्यों रोएगा? पैदा होते ही सबसे पहली पुकार है कि आनंद चाहिए, तभी तो रोता है। सुखी में कोई रोता है? नहीं रोता। दुखी होता है तो रोता है। बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई किया, क्यों पढ़ना लिखना है? बढ़िया जॉब मिलेगी। क्यों जॉब करके क्या करोगे? जॉब करके पैसा मिलेगा, पैसे से क्या करोगे? भोग पदार्थ लाएंगे, खाना पीना लाएंगे, स्त्री पुत्र आदि पैदा करेंगे, उससे क्या होगा? अरे आनंद मिलेगा, बहुत मजा होगा। अल्टीमेट जाकर के खींचतान करके कुछ भी करे जीव, लेकिन उसका उद्देश्य आनंद की प्राप्ति करना, इसका कारण है। और कोई भी, चाहे जितना बड़ा बुद्धिमान हो चाहे जितना बड़ा मूर्ख हो, व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता, चेहरे नहीं मिलते, स्वरूप किसी के कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन एक चीज सारे प्राणियों का मिलता है इन शरीरों को धारण करने के बाद, आनंद सबको चाहिए। किसी को बता दो, किसी को पूछो तुमको दुख दे दें? नहीं, दुख नहीं चाहिए, मजा चाहिए, सुख चाहिए। स्वभाव है उसका, नेचर है, वो मांगना ही पड़ेगा उसको, आनंद उसको लेना ही पड़ेगा। वो दैव से शरीरों को धारण क्यों कर रहा है? इसीलिए आनंद की प्राप्ति हुई नहीं तो कर्म करता है, सोचता अब मिलेगा, ऐसा कर्म करूंगा तो ऐसा आनंद मिल जाएगा, पढ़ लिख लूंगा, नौकरी करूंगा, पैसा मिलेगा, तब आनंद मिलेगा, तब पर भी नहीं मिलता है। मृग तृष्णा के जैसे है, जैसे रेगिस्तान में मृग है तो रेगिस्तान में धूल के कण उड़ते रहते हैं, छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म कण उड़ते रहते हैं, वो मृग को दिखाई पड़ते हैं, और उस उन कणों में जो उड़ते हुए कण है, उन कणों में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो मिट्टी के कण और सूर्य का प्रकाश दोनों के संयोग होने से जल उत्पन्न हो जाता है वहां पर। तो मृग को जल दिखाई पड़ता है तो उस जल को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, वहां जाता है तो सोचता है अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, कभी मिलता ही नहीं उसको, बेचारा दौड़ते दौड़ते मर जाता है वहां पर। ऐसे ही जीव सोचता है अब आनंद मिलेगा, अब मिलेगा, लेकिन कभी नहीं मिलता उसको। और शरीर खूब सारे बदल डालता है, 84 लाख योनि में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आनंद नहीं चाहिए, ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक और उससे भी जो सूक्ष्म इंसेक्ट, सबको चाहिए, कोई ऐसा नहीं है। और चाहिए कि नहीं, उसका स्वरूप है, सच्चिदानंद है वो, इसलिए उसको चाहना पड़ेगा ही पड़ेगा, और क्या चाहेगा बताइए। आप सब लोग हैं, हम सब हैं, और भी बाहर इतने सारे लोग क्यों कर्म करें? एक आनंद की प्राप्ति के लिए। दो प्रकार के जीव हैं, कुछ आनंद में निमग्न है जिनको आनंद की प्राप्ति हो चुकी है, और कुछ आनंद के लिए पगलाए हुए हैं जो कि खोज रहे हैं, ऐसा करने पर मिलेगा, वैसा करने पर मिलेगा, जो खोज रहे हैं वो इस संसार में डले हुए हैं। और जिनकी खोज पूर्ण हो गई वो भगवत धाम में है। क्यों आनंद क्यों चाहिए? भागवतम में लिखा है कि स्वरूप है आनंद, और आनंद क्योंकि, एक उदाहरण दे रहा हूं, दीप जलाते हैं, है ना, दीप जलाने के बाद जब दीप किस तरफ उड़ता है? ऊपर की ओर, कभी तिरछा नहीं होता ना नीचे की ओर, उसकी उसकी रोशनी और उसका जो प्रकाश है और उसका जो धारा ऊपर की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि उस दीपक का स्रोत ऊपर है, सूर्य है। पृथ्वी में आप जल गिराइए तो नीचे की ओर जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका वास्तविक स्रोत रसातल में है, पाताल के नीचे संपूर्ण जल वहां पर भरा हुआ है। वायु है कहीं भी खोलिए, वायु अपने आप तिरछी जाती है तो तिरछी मिल जाती है वो, तो जो जिसका अंश है उससे वो मिलना चाहता है। तो जीव भगवान का अंश है, आनंद का अंश है। तैतरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में और भृगुवल्ली में कहा गया, भृगुवल्ली में सातवां अनुवाक है कि आनंदो ब्रह्मेति व्याजानात आनंदाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदमेव अभिविशन्ति और आनंद में ही प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि जो ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण है, वो आनंद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, आनंद उनका स्वरूप नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आनंद भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान आनंद स्वरूप ही हैं। क्योंकि पानी का समुद्र, ऐसा कोई बोलता है कि समुद्र में पानी है? नहीं बोलता ना। पानी ही तो, बहुत सारा पानी ही तो समुद्र है। तो ऐसी भगवान जो आनंद, समग्र आनंद का स्रोत और जो संपूर्ण आनंद स्वरूप ही भगवान है। और आनंद से जो पैदा होने वाले जीव, यदि आनंद से नहीं पैदा हुए होते जीव, तो आनंद की खोज करते भी नहीं। इसीलिए वो आनंद की खोज कर रहे हैं। कोई भी बता दे कि आनंद के अलावा कोई और वस्तु चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए ही नहीं, केवल और केवल आनंद चाहिए, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लंगड़ा लूला अंधा काणा, सबको आनंद चाहिए। जो भी कर्म करेगा केवल आनंद के लिए। क्यों? क्योंकि वो आनंद का अंश है, आनंद अपने स्वरूप में मिलना चाहता है वो। इसलिए तो स्वकर्म भी आनंद से प्राप्ति में इच्छति, अपने कर्मों से केवल आनंद की प्राप्ति को चाहता है। आर्य के भागवतम में भी, उपनिषदों में, तैतरी उपनिषद में दो जगह, रसो वैसह रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, रस को प्राप्त करके ही, आनंद को प्राप्त करके ही वो सुखी होता है, आनंदित होता है। लेकिन मायावादियों जैसा इसको नहीं बोलना चाहिए। मायावादी कहते हैं कि जीव ही आनंद है, वही ब्रह्म है और वही ब्रह्म हो जाता है। लेकिन इस मंत्र में लिखा है कि आनंदी भवती माने आनंदी होता है, वो व्यक्ति आनंदी हो जाता है, न कि आनंद हो जाता है माने भगवान नहीं बन जाता, क्योंकि आनंद तो भगवान है ना, और जीव उसको पाकर आनंदी हो जाता, आनंदित हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद में भी पहले अध्याय के पहले खंड का तीसरा मंत्र है कि सएषा रसानाम रसतमः परमः, ये भगवान जो है वो रसों का सबका ये रस रूप है, स्वरूप रस स्वरूप है, वो परम रस स्वरूप है, और उसका अंश है जीव। यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति, जो भूमा है, जो सबसे बृहद सर्वव्यापी है, वही सुख स्वरूप है और उसी की खोज जीव कर रहा है। ब्रहदर छांदोग्य उपनिषद में ही सातवें अध्याय के 23वें खंड में पहला मंत्र है, एक ही मंत्र है, उसमें कहते हैं यो वही भूमा तत् सुखम, जो भूमा है, जो सर्वव्यापी, वही सुख रूप है और दूसरा कुछ भी नहीं है। आनंदम अक्षरम साक्षात मत्वा धीरो न सोचते, कि ब्रह्म जो आनंद स्वरूप केवल भगवान है और उनकी प्राप्ति करके ही व्यक्ति शोक में दोबारा नहीं आता। ये जावाल दर्शन उपनिषद में 4वें अध्याय का 62वां मंत्र है, उसमें कहते हैं कि उसको जान करके, क्योंकि खोज तो आनंद ही रहा है लेकिन उसको पता नहीं कि आनंद मिलेगा कहां। अब किसी को मक्खन निकालना है, अब मक्खन निकालने के लिए वो व्यक्ति दही भी, एक दही के समान चूने का पानी भी होता है, देखे हैं चूने का पानी, वो भी सफेद होता है, दही भी सफेद होती है। अब वो कहे कि हम चूने के पानी में मथनी लगा करके मथ देंगे, चर्निंग करेंगे तो दही मक्खन निकल आएगा, पसीना निकल आएगा लेकिन मक्खन नहीं निकलेगा। तो माया में वो सोचता है, क्योंकि यहां चूंकि उसका अधिष्ठान भगवान है इसलिए थोड़ी सी चेतनता होती है, माया में दिखती है, होती है नहीं, तो इसलिए सोचता है यहां सुख मिल जाएगा, ये प्राप्त करूंगा तो सुख मिल जाएगा। तो बस वो चूने के पानी में मथनी रगड़ने के जैसे है, कभी मक्खन की प्राप्ति नहीं होगी। तो जीव को पता नहीं है कि आनंद की प्राप्ति होगी कहां, इसीलिए वो अपने कर्मों से अलग अलग शरीर धारण करके खोज केवल करता है। आनंदमयो अभ्यासात, वेदांत सूत्र में पहले अध्याय के पहले पाद का 13वां मंत्र है कि आनंदमयो अभ्यासात, जीव तो आनंद स्वरूप है, वो आनंद का अंश है। भागवतम 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 13वें मंत्र में, श्लोक में वसुदेव जी कहते हैं कि सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तयः, ये 14वें अध्याय में है कि भगवान सत्य हैं, ज्ञान और अनंत हैं और आनंद स्वरूप हैं। आनंद मात्रम अविद्ध विकल्प अविकल्प विद्ध विरचः। ब्रह्मा जी कहते हैं तीसरे स्कंद के नौवें अध्याय के तीसरे श्लोक में कि आनंद मात्रम आनंद मात्र है भगवान, वो केवल उनका नाम ही आनंद है समझिए। इसीलिए जीव को देखा जाए यदि इस दृष्टि से तो कोई इस संसार में नास्तिक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आनंद भगवान का एक नाम है, आनंदो ब्रह्मेति व्याजानात, तो आनंद की खोज कर रहा है वो, भगवान की खोज कर रहा है लेकिन चूंकि इनडायरेक्ट वे से कर रहा है बस, है कि नहीं, लेकिन है वो आनंद की खोज ही कर रहा है। आनंद कौन? केवल भगवान है, माया तो आनंद है नहीं, वो तो दुख रूप है। तो यदि ऐसा देखा जाए तो कोई नास्तिक है भी नहीं। वो तो नास्तिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेद के वाक्यों को नहीं मानता कि भाई आनंद ऐसे नहीं, ऐसे मिलेगा, तो इसलिए उसको बोलते तुम नास्तिक हो, ईश्वर में बुद्धि नहीं लगाते हो, कहीं और ढूंढ रहे हो। तो इस प्रकार से भागवतम में भी प्रहलाद महाराज स्वयं आगे कहेंगे कि केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर माया अंतर हितैश्वर्य इयते गुण सर गया। सातवें स्कंद के इसी में छठवें अध्याय का तेईसवां श्लोक है। प्रहलाद जी बोलते हैं कि माया से भगवान अपने आनंद को छिपा के रखते हैं सर, लेकिन है कैसे? केवल शुद्ध अनुभव के योग्य और आनंद स्वरूप है वो भगवान, और वो जब आनंद स्वरूप है और खोज भी हमारी आनंद की है तो फिर क्यों यहां वहां भटके वहीं चला जाए, है ना? क्योंकि व्यक्ति जी भगवान से इतना दूर हो गया कि उस तरफ जाने का रास्ता ही भूल गया है, तो जब भगवान की कृपा होगी तब जाकर के वो उसको प्राप्त करेगा वापस। तो इस प्रकार से वेद शास्त्रों पुराणों सब जगह एक सिद्धांत फिक्स है कि जीव की एक ही खोज है अलग अलग कर्मों के माध्यम से। वो जहां भी पैदा होता है घर में, जो उसके कोई सगे संबंधी, उसका किसी के साथ संबंध नहीं है, वो उनसे सोचता है कि ये मेरे हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं सातवें अध्याय में उनतालीसवें श्लोक में कि रायः कलत्रम पशवः कुंजर कोष भूता, धन स्त्री हाथी घोड़े ग्रह मही जितने भी हैं पृथ्वी में, जितने भी वस्तुएं हैं, कहते सर्वर्थ कामा, जितने भी अर्थ काम है सब के सब क्षण भंगुर आयुषाह, कहते हैं सब थोड़े थोड़े समय के लिए हैं और कम समय में रहते हैं और स्थाई नहीं है। तो जो वस्तुएं स्थाई नहीं हो जीव को सुखी कर सकती नहीं है। जो स्थाई वस्तु है जहां अनलिमिटेड आनंद है वहां जाएंगे तो मिलेगा, आपको दोबारा कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, है ना? लेकिन जीव माया में ढूंढता रहता है कि अब मिलेगा, यहां से मिलेगा, लेकिन उसको मां बाप में ढूंढा, पत्नी बनाया, पुत्र बनाया, घर बनाया, घोड़ा लाया, तब पर भी संतुष्टि हुई ही नहीं, आनंद की प्राप्ति हुई ही नहीं, क्योंकि वो भगवान की शरण में नहीं गया। सबकी शरण में गए लेकिन भगवान की शरण में नहीं गए अभी तक, इसीलिए भटक रहे हैं। तो इसलिए अपने अपने कर्मों से व्यक्ति यहां पर आनंद की खोज में भटक रहा है और अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग परिवारों में पैदा होकर के शरीर में सारे कर्म हो रहे हैं, सब भोगना इसको है, लेकिन अहम बुद्धि कि मैं कर रहा हूं, ये शरीर मेरे द्वारा उत्पन्न है, मेरा बच्चे को मैंने पैदा किया, किसने किसको पैदा किया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना शरीर है आपका, वो भगवान की शक्ति है। जो बच्चा पैदा किए उसका भी शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से है, वो भी भगवान की शक्ति है। आपका क्या है? कुछ भी नहीं है, झूठे में वहां पर बुद्धि लगा करके रखे हैं। प्रहलाद जी डांटते हैं, कहते हैं कि स्वकुटुंब पोषाय व्यन्य जायुर न बुद्ध तीर्थम विहितम प्रमत्ता, छठवें अध्याय का चौदहवां श्लोक है इस सातवें स्कंद में। कहते हैं कि अपने जबरदस्ती संबंध बना करके और उनके पोषण के लिए पूरा जीवन खराब कर देता है, कुछ लाभ नहीं होता है, और जब वो मरता है व्यक्ति उसके बाद उसको कोई नहीं पूछता, दो चार दिन याद कर लेंगे, दिया जला देंगे। क्यों दिया जलाते हैं कर्मकांड में? दिया इसलिए जलाते हैं कि भाई तुम दोबारा इस घर में मत आना, इसके लिए दिया जला करके उसको भगा देते हैं घर से। तो सोचिए पत्नी बच्चे आदि जिनके लिए गधे जैसे काम किए जीवन भर, कुटुंब पोषाय व्यन्य जायुर न बुद्धितेरथम विहितम प्रमत्ता, और उसके लिए तापत्रय सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा है न निर्विद्यते दुरंत मोहा। कहते हैं कि उसके लिए तीन प्रकार के ताप भोगता रहा, और वही लोग अंत में धक्का मार करके वहां पर हटाओ हटाओ गंध आ रहे हैं, पत्नी बच्चे सबके सब भगाओ। अरे रात में यदि कहीं आ गए तो कहेंगे पिताजी आए थे, इनको कुछ ओझा को बुला करके दोबारा भूत बन के ना आए, भगाते हैं। तो इतना प्रेम है, और ऐसे ऐसे लोगों के लिए जीव कर्म करता रहता है और सोचता है इसको आनंदित कर दूंगा, हम मैं खुद हो जाऊंगा, कभी नहीं हो पाता। इसीलिए इसका सारांश यही है कि इसके लिए करने से कोई फायदा है ही नहीं। तो प्रभुपाद यहां पर एक बात लिखे हैं, कहते हैं कि अतः पुंभे द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सह सुनिष्ठितस्य धर्मस्य त्रायते संसिद्धिर हरितोषणम्। जीव का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्रसन्नता ही होना चाहिए, और यदि कुछ हुआ अपने प्रसन्नता के लिए प्रयास किया, खोज तो रहा है कि मैं आनंदित हो जाऊं, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि बिना भगवत कृपा के उसको आनंद की प्राप्ति होगी ही नहीं, वह अविद्या में पड़ा रहेगा। एकमात्र भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा तो खुद प्रसन्न हो जाएगा। इस बात को प्रहलाद महाराज ने स्वयं दो बार प्रकट किया, एक तो छठवें अध्याय के इसी सातवें स्कंद के 25वें में, तुष्टे च किम तत्र किम अलभ्यम अनंत आद्ये, कहते हैं कि यदि भगवान संतुष्ट हो गए तो फिर क्या प्राप्त करने के लिए बचा, कुछ नहीं, कुछ बचा। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान तुष्ट हो गए तो सारा संसार तुष्ट हो जाएगा। इस बात को पुष्ट करने के लिए आगे 11वें अध्याय में प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं, ध्यान से समझिए। कहते हैं नैवात्मना प्रभुरयम् निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषा करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधि तमानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। कहते हैं कि भगवान को क्या तुष्ट करेंगे, कोई प्रश्न किया कि कहते हैं प्रहलाद महाराज पहले खुद कहे कि तुष्टे च तत्र किमलभ्यम अनंत आद्य, आद्य भगवान श्री कृष्ण के संतुष्ट हो जाने के बाद फिर क्या प्राप्त करने के लिए रह गया, कुछ भी नहीं। तो कोई जीव साधारण पूछा कि यदि भगवान को क्या जरूरत है संतुष्ट करने की, क्या वो असंतुष्ट हैं, क्या वो पूर्ण नहीं है, क्या उनको भी आनंद की जरूरत है, क्या हमारे भक्ति की जरूरत है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं नहीं, नैव आत्मना प्रभुरयम् निज लाभ पूर्णः, ये जो भगवान है वो अपने लाभ से पूर्ण है, उनको किसी के संतुष्टि देने की आवश्यकता नहीं है, उनको किसके आनंद, हम क्या उनको आनंद दे सकते हो, तो स्वयं परमानंद है, स्वयं सच्चिदानंद, हम तो उनके एक अंश हैं, बस अंश होने से छोटे टुकड़े हैं। कहते हैं कि लेकिन भगवान जो है हमारे मान को, हमारे प्रेम को हमारे भेंट के माध्यम से ग्रहण करते हैं, और जब वो ग्रहण कर लेते हैं तो हम अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं कैसे, जरा उदाहरण देके समझाइए। तो कहते हैं कि प्रतिमुख से यथा मुखश्री, समझिए दर्पण लगा हुआ है, शीशा दर्पण मिरर, मिरर के सामने गए आप, चश्मा लगाइए, एक चश्मा लीजिए, और चश्मा लेकर के आप अपने लगा लीजिए, तो जैसे ही आप लगाएंगे चश्मा तो जो आपका जो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, वो मिरर पर जो पड़ रहा है उसमें भी चश्मा लगा हुआ दिखाई पड़ता है कि नहीं। और तिलक लगाइए, जैसे ही आप ऐसे तिलक लगाएंगे वो मिरर में भी तिलक लगा हुआ दिखाई देगा हमारे प्रतिबिंब में, तो जो ओरिजिनल स्वरूप है उसके प्रतिबिंब में वो दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही जीव का जो ओरिजिनल स्वरूप, हम किसकी शक्ति हैं, भगवान की, तो हम भगवान की शक्ति हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति तिलक लगाया ओरिजिनल स्वरूप में, तो अपने आप जो प्रतिबिंबित स्वरूप है उसमें अपने आप तिलक लग गया। और कोई बुद्धिमान कहे नहीं हम क्यों इसमें लगाएं, हम तो जो हमारा मिरर में दिखता है उसमें लगा दें, तो जब उसमें लगाने जाएगा तिलक तो जब हटेगा तो तिलक कहां रह जाएगा, मिरर में, न तो ओरिजिनल में रहा न तो प्रतिबिंब में रहा, वो माया में ही रह गया, मतलब मिरर में ही रह गया। तो ऐसे ही हम लोग यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हम अपने आप प्रसन्न हो जाएं, क्यों, क्योंकि हम उसके अंश हैं, हम उसकी शक्ति हैं। ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है, और यही भागवतम का, जो व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है वो व्यक्ति ही केवल एकमात्र शुद्ध होकर के भगवान के धाम जाने का अधिकारी है। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक है 37वां, उसमें बोलते हैं सुत गोस्वामी कि पिबंति ये भगवतः आत्मनः सताम श्रवण पुटेशु कथामृतम संभृतम कथामृतम ते पुनंति विदूषिताशयम अभ्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अब कैसे प्रसन्नता के लिए कैसे जानेंगे, कथा सुन करके भगवान के बारे में। जो भगवान के बारे में नहीं सुनता तो जानेगा नहीं, आ जब जानेगा नहीं तो मानेगा नहीं, आ जब मानेगा नहीं तो क्या प्रेम करेगा। कोई भी व्यक्ति है किसी भी चीज को करता है, उसका प्रेम उसमें बिना जाने नहीं होता। आपके सामने कोई गिलास में अनजान व्यक्ति लेकर आए मान लो, तो आप पहले जानेंगे कि जहर तो नहीं है, दूध है कि जहर है कि क्या है, उस विषय में ज्ञान करेंगे। बिना जाने भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है, भगवान को जानना पड़ेगा। कहीं पर भी सब भागवत में भी लिखा है जानना जरूरी है, और जानने के लिए व्यक्ति को बहुत प्रयास करना पड़ेगा तभी होगा। तो इसलिए भगवान को जानने के लिए उनकी कथा सुनना जरूरी है, और जो कथा सुना उसका हृदय साफ हुआ, और हृदय जब साफ हुआ तो उसमें अंतःकरण जब शुद्ध होगा। देखिए जीव गोस्वामी ने प्रीति संदर्भ में एक बात बोली है, हमारा अधिकार कितना है और भगवान का काम का है। जीव का अधिकार केवल और केवल अंतःकरण की शुद्धि करने तक है, हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर नहीं सकते हैं, पता है हमारे पास योग्यता ही नहीं है। हमारे पास एक योग्यता है कि हम अपने अंतःकरण को भगवान की कथा का श्रवण करके नाम जप के शुद्ध कर सकते हैं, और जब शुद्ध कर हो जाएगा तो भगवान अपना प्रेम देंगे। वो भगवान की वस्तु है, उसको हम अपने बल से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो भगवान की वस्तु, उनकी इच्छा होगी, अशुद्ध अंतःकरण होने के बाद भी और उसमें कितना चित्त, कितना भगवान में कृष्णा कॉन्शियस है, तब भगवान देंगे उसको प्रेम, अन्यथा नहीं देंगे। ये सिद्धांत है, हमारे पास अंतःकरण दिल को शुद्ध करें। कोई ऐसा नहीं गुरु हुआ है कि पात्र भी दे दे और आपको उसमें सामान भी दे दे, पात्र आपको लाना पड़ेगा तो व्यक्ति उसमें डालेगा, तो हमको पात्र बनना पड़ेगा तो प्रेम प्राप्त होगा। प्रेम का पात्र बनना माने अंतःकरण शुद्ध करना। तो इसलिए भागवत का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान के कथाओं में रुचि उत्पन्न करा देना और होना। जिसकी रुचि भागवत में नहीं हो रही है तो कितना भी खोपड़ी पटक के मर जाए, कुछ भी करता रहे, कोई भी सेवा करे, भगवान की कथाओं में रुचि होना ही मुख्य है। पहले ही आप लोगों ने सुना है कि धर्मा सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पाद ये दिए रतिम श्रम एव ही केवलम। वो श्रम है, आप कुछ भी करो, कोई भी मैनेजमेंट करो, कोई भी अर्चना करो, कुछ भी करो, कर्मी लाइफ जियो, लेकिन यदि भगवान की, कृष्ण की कथाओं में रुचि नहीं हो, टेस्ट करने के लिए ये भागवतम का की श्लोक है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, कि ये चेक करने के लिए, ये चाबी है सबकी, इसको जानो, इसी से सबको द्वार पूरा खुलेगा। कथाओं में रुचि, हम लोगों को चेक करना चाहिए कि हम एक घंटा, दो घंटा, पांच घंटा, कितने देर कथा सुन सकते हैं भगवान की, कितनी क्षमता है। एक आध दिन सुनेंगे, एक आध घंटे में बोर हो जाते हैं, इसका मतलब ही बहुत दूर है ट्रैक से, है कि नहीं। तो जितनी ज्यादा कथा सुनने में रुचि होगी, हमारी पहचान है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और यही भागवत का मुख्य श्लोक है ये समझने के लिए। तो इसीलिए यहां पर बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए और समझाने के लिए, जितना बुद्धि में आया मेरे मैं बोल दिया। अब प्रसादम का समय भी हो गया, क्योंकि वो भी जरूरी है, भक्त लोग सुबह 3 बजे से उठते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सारांश यही है कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से भगवान की खोज, आनंद की खोज करता है, लेकिन चूंकि उसको पता नहीं कि आनंद कहां मिलेगा, कौन है। और आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि आनंद भगवान प्रतिदिन देते हैं, एक बार उसका आभास कराते हैं। जब जीव पुरिषद नाड़ी के अंदर चला जाता है, जब मन कार्य करना बंद कर दे, इंद्रियां शांत हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है, तब जो मन है पुरिषद देश की नाड़ी में चला जाता है, उस समय कोई स्वप्न नहीं, कोई जागृत अवस्था नहीं, केवल सुसुप्ति, निद्रा, घोर ताम, उस समय केवल शुद्ध आत्मा रहता है परमात्मा के साथ, भगवान के साथ। तो वो जो भगवान उस समय उसका आलिंगन करते हैं क्षण भर के लिए, उसी का जो आनंद प्राप्त हुआ उसी को वो दिन में खोजता रहता है। प्राज्ञेन आत्मना पुरुषः, उसको कुछ जानते ही नहीं है, वो जो भगवान उसको आलिंगन करते हैं छोटा सा, तो भगवान इसलिए कराते हैं कि देख बेटे छोटे से आलिंगन में इतना आनंद है, तो जब मुझे प्राप्त कर लोगे तो जो खोज रहे हो यहां पर झूठे में ही वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो इसलिए मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, है ना। तो इस प्रकार से जीव अपने अपने कर्मों से अज्ञानतावश अलग अलग योनियों में जाता है। और तो कपिल जी 30वें अध्याय में तीसरे स्कंद के तीसरे चौथे में कहते हैं कि जहां जहां जाता है उसी को अपना मान लेता है। नारकस्थो भी देहम वही कहता है कि नपमान तक तुम इच्छति, 3:34 में कपिल जी कहते हैं कि नरक में क्यों ना चला जाए और नार की पशु योनि में क्यों ना चला जाए, वहीं जाके आसक्ति बना लेता है, उसको भी नहीं छोड़ना चाहता, ये जीव का स्वभाव बन गया है, तो इससे बचना चाहिए तभी जाकर के कल्याण होगा, और कुछ भी उपाय नहीं है। केवल यहां पर प्रभुपाद ने लिखा कि संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास ही जीव का उत्थान करा सकता है, बाकी प्रयास तो हम लोग कई बार कर चुके, कितने अनंत बार जन्म हुआ, अनंत जगह, अनंत कई बार धनवान बने, गरीब बने, सुंदर बने, सब बन गए, मिला नहीं, अब केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करें, भक्ति करें, तो सब कुछ प्राप्ति होगी। सर्वम मद भक्ति योगे न मद भक्तो लभते अंजसा, 11:20-30-31 में भगवान बोलते सब कुछ प्राप्त हो जाएगा भक्ति करने, चिंता मत करो। स्वर्गापवर्गम मध्धाम कथंचित यदि वांछति, स्वर्ग अपवर्ग भोग सब प्राप्त हो जाएंगे, भक्ति तो करो, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि जीव का मन नहीं मानता इसलिए यहां वहां दौड़ता रहता है। तो इस प्रकार से आगे की बात, अब आत्मा कैसा स्वरूप है वो आगे के अध्याय में हिरण्यकश्यपु महाराज बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, जो भी त्रुटि हुई हो क्षमा करिएगा, किसी को कोई प्रश्न हो तो एक आध प्रश्न कर सकते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।